ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।
पंचतंत्र।
संपूर्ण पंचतंत्र का दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति ही। शाब्दिक अर्थ देखें तो मित्र की प्राप्ति होना, यानी दोस्त मिलना, दोस्तों को मित्रों को पाना। अब मित्र संप्राप्ति नाम का दूसरा तंत्र आरंभ करते हैं। विद्वान, बुद्धिमान और बहुत प्रसिद्ध मनुष्य साधनहीन होते हुए भी कौवे, चूहे, हिरन तथा कछुए के समान शीघ्र अपना कार्य सफल करते हैं। एक समय दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। उसके निकट ही बहुत बड़ा, अनेक पक्षियों के लिए फलों से भरा, कीटों से भरे कोटर युक्त और छाया द्वारा राहगीरों को आराम देने वाला एक महान वटवृक्ष था, अथवा ठीक ही कहा है, जिसकी छाया में हिरन सोते हों, पक्षियों के झुंड द्वारा चारों ओर से जिसके पत्ते ढके हों, जिसके कोटर कीड़ों से भरे हों, शाखाओं पर बंदर बैठे हों, भौरे जिसके फूलों का रस पी रहे हों और जो अपने सारे अंगों से बहुत सारे जीवों को सुख दे रहा हो, वह पेड़ प्रशंसनीय होता है। इसके अलावा सारे पेड़ पृथ्वी के भार के समान होते हैं। उसी पेड़ पर लघु पतनक नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन वो चारे की खोज में नगर की ओर जैसे ही चला, उसी समय जाल हाथ में लिए काला शरीर, फटे पैर, उलझे बाल तथा यमदूत के समान भयानक एक मनुष्य उसे दिखाई दिया। उसको देखकर शंकित मन से कौवा सोचने लगा, ये दुरात्मा आज मेरे आश्रय वटवृक्ष के पास आ रहा है। पता नहीं कहीं आज वटवृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षियों का नाश तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सोचकर उसी क्षण लौटकर उस वटवृक्ष पर गया और सब पक्षियों से बोला, भाइयों, एक दुष्ट बहेलिया जाल और चावल हाथ में लिए आ रहा है, इसलिए किसी भी तरह इस पर विश्वास ना करना। वो जाल फैलाकर चावल बिखेरेगा, उन चावलों को तुम सब हलाहल भयानक विष के समान समझना। वो ऐसा कह ही रहा था कि इतने में वो मनुष्य पेड़ के नीचे आ गया और जाल फैलाकर चावलों को बिखरा कर थोड़ी दूर पर एकांत में बैठ गया। वहाँ रहने वाले सारे पक्षी लघुपतनक के बात से सावधान होकर उन चावलों को हलाहल विष के समान देखते हुए एकांत में चुपचाप बैठे रहे। उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने अपने कुटुंबियों के साथ चारे के लिए घूमते हुए उन चावलों को दूर से ही देखा। लघुपतनक की बात सुनकर भी वो जीभ की चंचलता के कारण चावलों को खाने के लिए उतरा और परिवार सहित जाल में फंस गया। कहा भी है, जीभ के लालच में आसक्त अज्ञानियों का जल में रहने वाली मछलियों के समान अचिंतित वध होता है, अथवा देव की प्रतिकूलता से ही ऐसा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कहा भी है, रावण ने दूसरे की पत्नी के हरने का दोष क्यों नहीं समझा? रामचंद्र ने सोने के हिरण की संभावना नहीं होने को क्यों नहीं समझा? और युधिष्ठिर ने पासे के खेल के अनर्थ को क्यों नहीं जाना? प्रायः विपत्ति के पास आने पर मूर्ख बुद्धि हो जाने वालों की बुद्धि ही कमजोर हो जाती है। और देखो, यमराज के पाश में बंधे हुए और देव से अचेत मन महापुरुषों की बुद्धि भी कुटिलता से चलने लगती है। उसके बाद वो बहेलिया उन कबूतरों को बंधा हुआ समझकर खुशी खुशी लकड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। चित्रग्रीव अपने को बंधा हुआ और बहेलिए को आता देखकर उन कबूतरों से बोला, भाइयों, डरना नहीं। कहा भी है, सब प्रकार के दुख प्राप्त होने पर भी जिसकी बुद्धि कमजोर नहीं होती, वो उसके प्रभाव से निसंदेह उस दुख को पार कर लेता है। महात्मा लोग संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। सूर्य उदय के समय में लाल और अस्त काल में भी लाल ही रहता है। इसलिए हम सब लीला से ही जाल सहित उड़कर इसकी आंखों से ओझल होकर छूट जाएंगे। यदि डर से व्याकुल होकर उत्साह के साथ नहीं उड़ेंगे तो हम सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। कहा भी है, धागे बहुत कमजोर होते हैं और बहुत सारे धागे मिलकर बहुत से बोझ को सह लेते हैं। ठीक यही उपमा महात्माओं की है। वैसा करने पर वो बहेलिया जाल को लेकर आकाश में उड़कर जाते हुए कबूतरों का पीछा करता हुआ जमीन पर उनके पीछे दौड़ा और ऊपर को मुंह करके कहने लगा, ये पक्षियों का समूह मेरे जाल को लेकर उड़े जा रहा है। जब ये सब आपस में विवाद करके गिरेंगे तभी मेरे कब्जे में आएंगे। लघुपतनक भी चारे की चिंता को छोड़कर अब क्या होगा, इस जिज्ञासा से कौतूहलवश पीछे पीछे चल दिया। उन कबूतरों की आंखों से ओझल होने और उन्हें उड़ गया जानकर बहेलिया ये कहता हुआ लौटा, जो नहीं होना है वो नहीं होता, जो होना है वो अवश्य होता है। जिसकी होनी नहीं होती तो हाथ में रखा हुआ पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। पक्षियों के मांस का लाभ तो दूर रहा, परिवार की आजीविका का साधन मेरा जाल भी नष्ट हो गया। चित्रग्रीव भी बहेलिए को आंखों से ओझल देखकर उन कबूतरों से बोला, भाइयों वो दुष्ट शिकारी लौट गया, इसलिए सब निश्चिंत होकर महिला रोप के पूर्व दिशा की ओर चलो। वहां मेरा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है, वो हमारे बंधन काट देगा। कहा भी है, संकट के समय प्राणियों को वाणी मात्र की भी सहायता मित्र के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार चित्रग्रीव के कहने पर वे सब कबूतर हिरण्यक के बिल पर जा पहुंचे। हिरण्यक भी हजार दरवाजे वाले बिल में घुसकर निडर तथा सुख से रहता था, अथवा अच्छा ही कहा है, बिना आए भय को देखने वाला और नीति शास्त्र का पंडित चूहा 100 दरवाजों का बिल बनाकर आनंद पूर्वक रहता था। जैसे बिना डाढ़ का सांप तथा बिना मद का हाथी असहाय होता है, उसी प्रकार बिना किले का राजा असहाय होकर सबके वश में आ जाता है। और हजारों हाथियों तथा लाखों घोड़ों से जो कार्य सफल नहीं होता, वो युद्ध में राजा के केवल एक किले से सफल हो जाता है। किले में बैठा केवल एक धनुषधारी 100 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। इसी कारण नीति शास्त्र के ज्ञाता किले की प्रशंसा करते हैं। चित्रग्रीव बिल के निकट जाकर ऊंचे स्वर में बोला, हे मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर बहुत कष्ट आ गया है। ये सुनकर हिरण्यक बिल के अंदर से ही बोला, भाई आप कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है, आप पर कैसी विपत्ति आई है, कहिए तो। ये सुनकर चित्रग्रीव बोला, भाई मैं चित्रग्रीव नामक कपोतों का राजा और तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए तुम शीघ्र आओ, मेरा बहुत बड़ा कार्य है। ये सुनकर हिरण्यक पुलकाय मान शरीर, प्रसन्न आत्मा तथा स्थिर मन लेकर शीघ्रता से बिल से निकला, अथवा ये ठीक ही कहा है। स्नेह से भरे तथा आँखों को आनंद देने वाले मित्र महात्मा गृहस्थों के घरों में हमेशा नहीं आते। हे तात, सूर्य का उदय, तांबुल यानी कि पान का पत्ता, महाभारत की कथा, मनचाही पत्नी और अच्छे मित्र दिन दिन अपूर्व होते जाते हैं। उसके बाद चित्रग्रीव को सपरिवार बंधन में बंधा देखकर हिरण्यक दुखी होकर बोला, मित्र ये क्या है। वो बोला, मित्र देखकर भी क्यों पूछ रहे हो, कहा भी है, जिसके घर मित्र हमेशा आते रहते हैं उसके मन में इसके समान और कोई सुख नहीं हो सकता, जिससे जिसके द्वारा जब जैसा जो जितना और जहां अपना शुभ अशुभ कर्म किया हुआ रहता है, उससे उसके द्वारा तब तैसा सो उतना और तहां ही काल की प्रेरणा से फल प्राप्त होता है। जीव की चंचलता के कारण मुझे ये बंधन प्राप्त हुआ है, इस कारण तुम जल्दी से हमारे बंधन खोल दो। ये सुनकर हिरण्यक बोला, जो पक्षी 150 योजन से अधिक दूरी पर मांस को देख लेता है, वो भाग्य के कारण पास के बंधन को नहीं देख पाता, और सूर्य चंद्रमा भी ग्रहण से पीड़ित होते हैं, हाथी सांप और पक्षी बंधन में पड़ते हैं तथा बुद्धिमानों में गरीबी देखी जाती है, इसलिए मुझे विश्वास होता है कि देव ही बलवान हैं। और भी एकांत आकाश में घूमने वाले पक्षी पर भी विपत्ति आती है, और चतुर पुरुषों द्वारा बहुत जल वाले समुद्र से भी मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। इस संसार में दुर्लभ क्या है, सुकृत क्या है, स्थान लाभ में भी क्या गुण है, क्योंकि काल हाथ फैलाकर दूर से ही सबको पकड़ लेता है। ऐसा कहकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने लगा, तो वो बोला, भद्र ऐसा मत करो, पहले मेरे सेवकों के बंधन काटो, उसके बाद मेरे बंधन काटना। ये सुनकर हिरण्यक क्रोधपूर्वक बोला, मित्र आपने ठीक नहीं कहा, क्योंकि स्वामी के बाद ही सेवक की बारी आती है। वो बोला, भद्र ऐसा ना कहो, ये सारे कबूतर मेरे सहारे हैं और अपने परिवार को त्याग कर मेरे साथ आए हैं, इसलिए क्या मैं इनका इतना भी सम्मान न करूं। कहा भी है, जो राजा सेवकों का हमेशा अधिक सम्मान करता है, तो वे सेवक धन के अभाव में भी उसको कभी नहीं त्यागते, और विश्वास संपत्तियों की जड़ है, इस कारण ही हाथी यूथपति कहलाता है, यूथपति सेनापति, और सिंह हिरणों का स्वामी होकर भी हिरणों से घिरता नहीं। और फिर हो सकता है कि मेरे बंधन काटते समय तुम्हारे दांत टूट जाएं, या कि वो दुष्ट बहेलिया ही पहुंच जाए, तो मेरा नरक में जरूर पतन होगा। कहा भी है, जो प्रभु सदाचारी सेवकों के दुखी होने पर सुखी होता है, वो परलोक में नरक जाता है और यहाँ भी दुख पाता है। ये सुनकर बहुत प्रसन्नता के साथ हिरण्यक बोला, भैया मैं राजधर्म जानता हूँ, ऐसा कहकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, अब मैं पहले तुम्हारे साथियों के ही बंधन काटूंगा। इस तरीके से तुम बहुत सारे परिवार वाले हो जाओगे। कहा भी है, जिस राजा का सेवकों पर हमेशा करुणा तथा समान प्रेम बना रहता है, वो राजा त्रिलोकी की रक्षा करने में भी समर्थ होता है। ऐसा कहकर और सारे कबूतरों के बंधन काटकर हिरण्य चित्रग्रीव से बोला, मित्र अब अपने स्थान को जाओ, फिर कभी कोई दुख पड़े तो आना। इस प्रकार उनको भेजकर वो फिर अपने बिल में चला गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने स्थान को लौट आया। अथवा सच ही कहा है, मित्रवान मनुष्य कठिन कार्यों को भी पूरा कर लेते हैं, इस कारण लोगों को अपने समान मित्र बनाना चाहिए। लघुपत्न कौवा चित्रग्रीव के बंधन मुक्त होने का दृश्य देखकर बहुत अचंभित हुआ। सोचने लगा, अहो इस हिरण्य की बुद्धि, शक्ति और किले की चीजें विचित्र हैं। इसी प्रकार इन कबूतरों का बंधन से मुक्ति का तरीका भी अनोखा है। हालांकि चंचल प्रकृति होने के कारण मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं इसको अपना मित्र जरूर बनाऊंगा। कहा भी है, पूरी तरह संपन्न होकर भी पंडितों को बहुत सारे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि सब तरह से परिपूर्ण समुद्र भी चंद्रमा के उदय की इच्छा रखता है। ऐसा विचार करके वो पेड़ से उतरा और बिल के दरवाजे पर पहुंचा और चित्रग्रीव की तरह हिरण्यक को पुकारा, भाई हिरण्यक यहाँ आओ। उस आवाज़ को सुनकर हिरण्यक ने सोचा, क्या कोई कबूतर बंधा रह गया है जो मुझे बुला रहा है। वो बोला, भाई आप कौन हैं। कौवा बोला, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। ये सुनकर बिल में घुसकर हिरण्यक बोला, तुम इस स्थान से बहुत जल्दी चले जाओ। कौवा बोला, मैं एक बहुत बड़े काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, फिर तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। हिरण्यक ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। कौवा बोला, मैंने तुम्हें चित्रग्रीव के बंधन को काटते देखा है, इस कारण मेरा तुमसे बहुत स्नेह हो गया है। यदि मैं कभी बंधन में पड़ जाऊं तो तुम्हारे द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए तुम मेरे साथ मित्रता कर लो। हिरण्यक बोला, अहो तुम मेरे भक्षक, मुझे खाने वाले और मैं तुम्हारा भोजन, तब तुम्हारे साथ मेरी मैत्री कैसी। तुम जाओ, ऐसे विरोध भाव में मित्रता कैसे होगी। कहा भी है, जिसका धन और कुल समान हो उन्हीं में मित्रता और विवाह संबंध होता है, सहजोर और कमजोर में ये संभव नहीं है। और भी, जो मूर्ख तथा कुबुद्धि प्राणी अपने प्रतिकूल, कमजोर या अधिक सामर्थ्य वाले के साथ मित्रता करता है, उस पर सब हंसते हैं। तुम जाओ। कौवा बोला, भाई हिरण्यक, मैं तुम्हारे बिल के दरवाजे पर पड़ा हूँ, यदि तुम मेरे साथ मित्रता नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगा अथवा यहीं अनशन करूंगा। हिरण्यक बोला, तुम दुश्मन के साथ मेरी मित्रता कैसे होगी। कहा भी है, बहुत प्रेम के साथ संधि की इच्छा करने वाले दुश्मन से भी संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह गर्म पानी भी आग को बुझा देता है। कौवा बोला, मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तब दुश्मनी कैसी, इसलिए ऐसी अनुचित बात क्यों कह रहे हो। हिरण्यक बोला, दुश्मनी दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक और दूसरी कृत्रिम, इसलिए तुम हमारे स्वाभाविक दुश्मन हो। कहा भी है, कृत्रिम दुश्मनी कृत्रिम गुणों से शीघ्र नष्ट हो जाती है, किंतु स्वाभाविक दुश्मनी प्राण लिए बिना नहीं जाती। कौवा बोला, अरे भाई हिरण्यक, मैं दोनों प्रकार की दुश्मनी के लक्षण सुनना चाहता हूँ, बताओ। हिरण्यक बोला, भाई जो दुश्मनी किसी कारण से शांत हो जाए वो कृत्रिम होती है, योग्य साधनों से वो खत्म हो जाती है, किंतु स्वाभाविक दुश्मनी किसी प्रकार भी खत्म नहीं होती, जैसे नेवले सांप की, घास खाने वाले नखा युद्धों की, पानी आग की, देव दैत्यों की, कुत्ते बिल्ली की, धनी निर्धन की, सौतों की, बहेलियों पक्षियों की, वेद पाठ करने भ्रष्ट काम करने वालों की, मूर्ख और पंडितों की, पतिव्रता कुलटाओं की तथा सज्जन दुर्जनों की सहज ही दुश्मनी होती है। इनमें से कोई किसी को नहीं मार डालता, फिर भी ये प्राणों को तो दुख देते हैं। कौवा बोला, कारण से ही लोग मित्र और कारण से ही शत्रु बन जाते हैं, इसलिए बुद्धिमान को मित्रता ही करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। इस कारण मेरे साथ मित्र धर्म निभाने के लिए मित्रता करो। हिरण्यक बोला, भाई नीति का सार सुनो, जो एक बार बिगड़े हुए मित्र के साथ संधि करना चाहता है वो मानव मृत्यु को चुनता है, जैसे खच्चरी मरने के लिए ही गर्भ धारण करती है। अथवा मैं गुणवान हूँ इसलिए मुझे कोई दुश्मन यातना नहीं देगा, ये भी संभव नहीं है। कहा भी है, व्याकरण के रचयिता पाणिनि के प्राणों को सिंह ने ले लिया, मीमांसा शास्त्र के बनाने वाले जैमिनी मुनि को अचानक हाथी ने मार डाला, और छंद शास्त्र के धुरंधर ज्ञाता पिंगल ऋषि को समुद्र तट पर मगर ने निगल लिया। अज्ञान से ढके मन वाले तथा बहुत क्रोधी कीड़े आदि जीवों को किसी के गुणों से क्या मतलब। उपकार से लोगों की, किसी कारण से हिरण तथा पक्षियों की, भय और लोभ से मूर्खों की तथा दर्शन करते ही सत्पुरुषों की मित्रता मिल जाती है। दुर्जन मिट्टी के घड़े की तरह सुख से तोड़ने योग्य और फिर जोड़ने के अयोग्य होता है। इसके विपरीत सज्जन सोने के घड़े की तरह दुर्भेद्य, मतलब जिसे भेदना कठिन हो और जल्दी जुड़ जाने वाला होता है। गन्ने के आगे के भाग से जैसे गांठ गांठ में रस विशेष होता जाता है, वैसे ही सज्जनों की मित्रता होती है, किंतु दुर्जनों की स्थिति इसके विपरीत होती है। और प्रारंभ में बहुत, फिर धीरे धीरे कम तथा पहले थोड़ी, फिर क्रम से बढ़ती हुई दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध से भिन्न छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। इसलिए मैं सज्जन हूँ और शपथ आदि से तुम्हारा डर दूर करूँगा। वो बोला, मुझे शपथ पर विश्वास नहीं है। कहा भी है, शपथ से संधि किए हुए शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुना जाता है कि शपथ लेकर इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला था। विश्वास के बिना देवताओं को भी शत्रु पर सफलता नहीं मिलती है। विश्वास से ही इंद्र ने दिति का गर्भ नष्ट कर दिया था। और भी, जो बुद्धिमान अपनी वृद्धि, आयु और सुख की इच्छा करता हो, उसे बृहस्पति पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर बहुत छोटे रास्ते से अंदर प्रवेश करके शत्रु का धीरे धीरे नाश करना चाहिए, जैसे पानी की गति धीरे धीरे नाव को भरती है। अविश्वासी पर विश्वास ना करें और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय प्राणी को समूल नष्ट कर देता है। अविश्वासी कमजोर को भी बलवान प्राणी नहीं बांध सकता। इसके विपरीत विश्वासी बलवान भी दुर्बलों द्वारा बांध लिए जाते हैं। नीति संधि तीन प्रकार की होती है। चाणक्य का मत है कि अच्छी तरह काम करना, शुक्राचार्य का मत है मित्र लाभ, और बृहस्पति का मत है विश्वास न करना। यही तीन प्रकार की नीति संधियां हैं। वैसे ही किसी बड़े प्रयोजन से भी जो शत्रु और विरक्त पत्नी का विश्वास करता है, तो उनके अंत तक ही उसका जीवन रहता है। ये सुनकर लघुपतनक निरुत्तर होकर सोचने लगा, अहो, नीति के विषय में इसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, इसलिए मैं इससे मित्रता करना चाहता हूँ। वो कहने लगा, भाई हिरण्यक, पंडितों का कहना है कि सात शब्दों में बात होते ही सत्पुरुषों की मित्रता प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्र होने के कारण आप मेरी बात सुने। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो दुर्ग में बैठे हुए ही तुम मेरे साथ हमेशा गुण दोष की विवेचना से भरी सुंदर बातें किया करो। ये सुनकर हिरण्यक सोचने लगा, लघुपतनक बातचीत में चतुर और सच बोलने वाला है, इसलिए इसके साथ मित्रता करना उचित है। परंतु ये कभी मेरे दुर्ग में पैर ना रखे। दुर्ग मतलब बिल। कहा भी है, भयभीत शत्रु पहले जमीन में धीरे धीरे जलता है, बाद में वो वैसे ही जल्दी जल्दी जलने लगता है जैसे स्त्रियों के अंग पर यार का हाथ चलता है। ये सुनकर कौवा बोला, भद्र, ऐसा ही हो। उस दिन से वे दोनों अच्छी अच्छी बातों का सुख अनुभव करते हुए रहने लगे। लघुपतनक भी मांस के टुकड़े, पवित्र बलि का बचा भाग तथा पकवान आदि पदार्थ लाकर हिरण्यक को देता, और हिरण्यक भी तंदूल आदि खाने के विशेष पदार्थ लाकर रात में आए हुए लघुपतनक को तुरंत दे देता था। अथवा उन दोनों का ये व्यवहार उचित ही था। कहा भी है, मित्र मित्र को देता है, लेता है, बात बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है। प्रीति के ये 6 लक्षण हैं। उपकार के बिना कहीं किसी की प्रीति नहीं होती। उपयाचित, अर्थात मेरा ये काम पूरा होगा तो ये दूंगा, दान से देवता भी मनचाही वस्तु प्रदान करते हैं। संसार में जब तक दान दिया जाता है, तभी तक प्रीति रहती है। बछड़ा दूध का अभाव देखकर माता को भी त्याग देता है। दान की महिमा तुरंत विश्वास दिलाने वाली होती है। दान के प्रभाव से शत्रु भी तुरंत मित्र बन जाते हैं। विवेकहीन पशु को भी दान पुत्र से अधिक प्रिय होता है। तभी तो खली, खली मतलब चारा, तभी तो खली देने पर पुत्रवती भैंस भी रोज अपने पालने वाले को दूध देती है। बहुत कहने से क्या, दुर्भेद्य, नाखून और मांस की तरह लगातार प्रीति करके वे चूहा और कौवा कृत्रिम मित्र बन गए। इस प्रकार उस कौवे के उपकार से खुश होकर चूहा उस पर ऐसा विश्वास करने लगा कि रोज उसके पंख में बैठकर बातें करने लगा। एक दिन आंसुओं से भरी आंखों के साथ कौवा उसके पास आया और गदगद स्वर से बोला, हिरण्यक, अब इस देश से मेरा मन उचट गया है, इसलिए मैं यहाँ से किसी और जगह चला जाऊंगा। हिरण्यक बोला, भद्र, इस मन के उचटने का क्या कारण है? वो बोला, भद्र, सुनो, इस देश में बहुत समय से बारिश नहीं होने से अकाल पड़ गया है, इसलिए भूख से पीड़ित कोई मनुष्य बलि भी नहीं देता। घर घर में भूखे लोगों ने पक्षियों को फंसाने के लिए जाल लगा रखे हैं। आयु शेष रहने के कारण मैं जाल से फंसकर भी निकल आया, यही मेरे वैराग्य का कारण है। इसलिए मैं विदेश जाने के कारण आंसू बहा रहा हूँ। हिरण्यक बोला, तो आप कहाँ जाएंगे? वो बोला, यहाँ से दक्षिण दिशा के घने जंगल में एक बड़ा तालाब है, वहाँ मेरा तुमसे भी अधिक प्यारा मित्र मंथरक रहता है। मंथरक कछुआ, वो मुझे मछलियों का मांस देगा, जिसको खाकर और उसके साथ सुंदर बातों का सुख अनुभव करता हुआ मैं समय बिताऊंगा। यहाँ मैं पक्षियों के बंधन में बंधने के कारण होने वाला विनाश देखने में असमर्थ हूँ। कहा भी है, हे तात, देश में बारिश नहीं होने से व्याकुल होने, अनाज के नष्ट होने तथा देश भंग के कारण होने वाले कुल के विनाश को जो नहीं देखते वे धन्य हैं। समर्थ पुरुषों के लिए क्या भार है, व्यापारियों के लिए क्या दूर है, विद्वानों के लिए कौन सा विदेश है और प्रियवादियों के लिए कौन गैर है? कोई नहीं। विद्वता यानी ज्ञान और नृपत्व यानी राजा का काम दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि राजा अपने ही देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। हिरण्यक बोला, ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी यहाँ बहुत दुख है। कौवा बोला, क्यों भाई, तुमको क्या दुख है? हिरण्यक कहने लगा, इस बारे में बहुत कुछ कहना है, वहीं चलकर सारी बातें विस्तार पूर्वक कहूंगा। कौवा बोला, मैं तो आकाश में उड़कर चलता हूँ, इसलिए तुम कैसे मेरे साथ चलोगे? वो बोला, यदि मेरे प्राणों की रक्षा करनी है तो मुझे भी पीठ पर चढ़ाकर अपने साथ ले चलो, अन्यथा मेरी गति नहीं है। ये सुनकर कौवा आनंद पूर्वक बोला, ऐसा है तो मैं धन्य हूँ, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूँगा। मैं उड़ने की संपात आदि 8 विधियाँ जानता हूँ, इसलिए तुम मेरी पीठ पर चढ़ो, जिससे मैं आनंद के साथ तुमको उस तालाब पर पहुँचा दूँ। हिरण्यक ने कहा, मैं उड़ने की विधियों के 8 नाम सुनना चाहता हूँ। वो बोला, संपात, विप्रपात, महापात, निप्रात, वक्रगति, तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछी गति, ऊर्ध्वगति और 8वीं है लघु संज्ञक गति। ये सुनकर और हिरण्यक तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया। कौवा भी उसको लेकर संपात उड़ान की चाल से धीरे धीरे उस तालाब पर जा पहुंचा। लघु पतनक के ऊपर चूहे को बैठा देखकर देशकाल जानने वाला मंथरक उसे कोई बड़ा कौवा समझकर पानी में घुस गया। लघु पतनक भी हिरण्यक को पेड़ की कोटर में छोड़कर एक ऊंची शाखा पर चढ़ गया और बहुत तेज आवाज से बोला, मित्र मंथरक, आओ आओ, मैं तुम्हारा मित्र लघु पतनक नाम का कौवा हूँ, इसलिए तुम आकर मुझे गले लगाओ। कहा भी है, कपूर मिले चंदन तथा बर्फ आदि ठंडे पदार्थों से क्या, वे सब मित्र के शरीर के स्पर्श की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। और भी, अमृत के समान मीठे मित्र, ये 2 अक्षर किसके बनाए हैं, जो संकट में से रक्षक और शोक संताप नाशक औषधि के समान है। ये सुनकर अच्छी तरह पहचान कर वो पानी से बाहर निकला और खुशी से गदगद शरीर होकर तथा आंखों में खुशी के आंसू भरकर मंथरक बोला, आओ आओ मित्र, मुझे गले लगाओ, बहुत समय बाद देखने के कारण मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, इसी कारण मैं पानी में घुस गया था। कहा भी है, जिसका पराक्रम या कुछ और व्यवहार नहीं पता हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, ऐसा बृहस्पति ने कहा है। मंथरक के ऐसा कहने पर लघु पतनक पेड़ से उतर आया और उसको गले से लगा लिया। अथवा ये ठीक ही कहा है, जिसके शरीर धोने भर का कार्य संभव हो उस अमृत के प्रवाह से क्या लाभ, बहुत समय बाद प्राप्त मित्र का आलिंगन यानी गले लगाना अमूल्य होता है। इस प्रकार वे दोनों आपस में गले लगकर खुश होकर पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना किस्सा सुनाने लगे। तभी हिरण्यक भी मंथरक को प्रणाम करके कौवे के पास आकर बैठा। उसको देखकर मंथरक ने लघु पतनक से पूछा, मित्र, ये चूहा कौन है? तुम अपने भोजन को अपनी पीठ पर बैठा कर क्यों लाए हो? इसका कोई साधारण कारण नहीं होगा। ये सुनकर लघु पतनक बोला, भाई, हिरण्यक चूहों का राजा मेरा मित्र और मेरा दूसरा प्राण है, बहुत कहने से क्या, जैसे बादलों की धारा, आकाश के तारे और पृथ्वी के धूल के कणों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार इस महात्मा के गुणों की गणना नहीं हो सकती। ये बहुत दुखी होकर आपके पास आया है। मंथरक बोला, इसके वैराग्य का क्या कारण है? कौवा बोला, मैंने पहले ही पूछा था, परंतु इसने कहा मुझे बहुत कुछ कहना है, इसलिए वहीं चलकर मैं सब कुछ कहूँगा, अंततः मुझसे भी कुछ नहीं कहा। भद्र हिरण्यक, अब हम दोनों को अपने वैराग्य का कारण बताओ। हिरण्यक बोला,
पंचतंत्र।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।